Pak Iwan, thank you Pak Song ya.
दिन में
کبھی دیر سے کھانا نہیں اگر اللہ کا خوف ہے, جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا خلیفہ اور رویا کرتے تھے عمر اگر تیری سلطنت میں ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو تجھے اللہ کو جواب دینا ہوگا, اور اس خوف کو اعتراضوں کو گیش کرتے تھے کسی کو تکلیف تو نہیں, اپنے خالص اسلم کو ساتھ لے لیتے اور پھرتے. ایک مرتبہ دیکھا کہ آبادی سے باہر جنگل میں آگ جلی ہوئی ہے, مدینہ منورہ تو چھوٹا سا شہر تھا, یہاں بڑی عمر کے بیٹھ کر جب 40 سال پہلے حج پہ گئے تھے وہ دیکھو بڑی فضیل تھی, بس تھوڑی تھی اس کے اندر اندر مدینہ تھا, تو آبادی سے باہر آگ جل رہی ہے, تو دیکھے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے اور چند بچے ہیں اور چولہا جلا ہوا ہے لکڑیوں پر سے ہانڈی رہتی ہے, بچے رو رہے ہیں. تو پوچھا کہ تم کون ہو کہ ہم بتاتے رہیں گے بچے کیوں رو رہے ہیں, کہ بھوک سے بیتاب ہیں, بھوک سے بیتاب ہیں, کہیں سے کھانا نہیں ملا, کہ ہانڈی میں کیا پکا رہے ہو, کچھ بھی نہیں, بچوں کو بہلانے کے لیے چولہے پہ چڑھا دیے. اور عورت پہچانتی تو نہیں تھی کہ کون, کہتے میرا اور عمر کا فیصلہ تو قیامت میں ہوگا, وہ نہیں پہچانتی تھی کہ کون میرا اور عمر کا فیصلہ قیامت میں ہوگا. تو حضرت عمر نے کہا کہ عمر تو تیرے حال کی بھلا کیا تھا, بس کیا پتا تیرا حال کیا, کہنے وہ ہمارے امیر بنے ہمارے حاکم بنے ہمارے حال کی تو خبر نہیں, کیونکہ حاکم کے ذمہ تو ہے, یہ نہیں کہہ سکتا کہ 17 کروڑ تھے اس کی میں کیسے دیکھتا, اس کا تو نظام بنا ہے. اللہ پاک قیامت کے دن جو گھر کا بڑا برادری کا بڑا ملک کا اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دیں گے تشریح, اور کہیں گے ان سب کے اپنے رعایا کے بارے میں جواب دو, باپ سے اپنے گھر کے بارے میں پوچھیں گے, ایک شہر کا ذمہ دار ہے, کمیشنر ہے, گورنر ہے, وزیر, اس سے اس کے شہر بڑا شوکڑا ہوتا ہے نا لوگوں کو گورنر بننے کا, وزیر آیا آسان کام نہیں, عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری زمانے میں آپ کو شہید کرنے کے لیے زخمی کیا گیا ہے, تو کسی نے کہا کہ آپ کوئی اپنا نائب مقرر کر دیں اور ان کے بیٹے کا نام دیا عمر کا, ایک خلیفہ بنا دیں یا جانشین مقرر کر دیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ خلافت کا دھندا خطاب کے بیٹے میں پڑ گیا, گلے میں پڑ گیا, یہی کافی ہے, حضرت عمر کے بارے میں نام خطاب تھا, یہ اپنے بارے میں کہا, اب میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد ایسے کرتے تھے, شوق نہیں تھا کہ مجھے ووٹ دو, بھاگتے تھے خلافت اور عمارت, اگر عمر کو تیرے حال کی کیا خبر, اگر وہ ہمارے قریب بنے ہمارا حال کی بنے, تو روتے تھے حضرت عمر, بیت المال سے ایک گوری میں کچھ دانے بھرے گندم کے یا جو کے جس کے بھی ہوں گے, کچھ گڑ لیا, کچھ گھی لیا, اس طرح جو فنین لیا ضرورت کی چیزیں نہیں, اور اپنے خاطر سے بوجھے کو میرے کندھے پہ لاد دیا, اسلم ان کے غلام تھا, ان کا امیر مومن میں اٹھا لوں گا, کہہ رہے نہیں میرے کندھے پہ لاد دیا, کہتے ہیں امیر مومن اٹھا لیتا ہوں میرے کندھے پہ لاد دیا, پھر کہا کیا قیامت میں میرے بوجھ کو اٹھائے گا, بس وہ کہتے ہیں یہ تو نہیں ہوگا, اگر میرے کندھے پہ لاد دیا, امیر المومنین ہیں جن کی سلطنت دور تک پہنچ گئی, ادھر شام تک, ادھر یمن کے کنارے تک, فتوحات کا دور ہے, حضرت عمر کا زمان تو فتوحات کا زمان ہے, کل دستی کا شام تک, اور شام جو ہے اس وقت یہ جس وقت شام میں یہ نہیں تھا, چار قریب کے بوئی مل کے شام تک ایک صوبہ بنتا تھا, جس وقت چار قریب مل کے نا جوڑنے ہیں مصر ہے اور کس طرح ہیں, اس کے ساتھ مل کے ایک صوبہ بنتا تھا, حضرت عمر کی سلطنت وہاں تک پہنچی کہ میرے کرنے پہ لاتے لے کے گئے, چاہے ہانڈی میں کچھ دانے ڈالے, کچھ گھی ڈالا, کچھ گڑ ڈالا, تو پکے ہریرا سے تیار ہو گیا, تو بچوں کو کھلا دو, کچھ دیر دور بیٹھے دیکھتے رہے اور کہا جس طرح میں نے بچوں کو روتے دیکھا ہے ہاتھ کا بھی دیکھنا چاہتا ہوں, یہ ہے ذمہ داری, یہ اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے مجھے بتا, اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو نہیں کرے گا, وہ تو پہلوں میں ویڈیو گارڈز کی موجودگی میں سوتا ہے, اللہ کا خوف. ایک زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں سیلاب آ گیا ایک علاقے میں, تو گورنر کو حکم دیا کہ خبردار ایسی محنت کرو کہ ایک آدمی کا بھی نقصان نہ ہو, तो उन्होंने पूरे अधिक जोड़ लगाया अपने आगे जो जो सैलाब को रोकने और घर वालों को बचाने के लिए अलहमदुल्ला सब बच गए, लेकिन एक कुत्ता बह गया पानी। अभी उन्होंने फैमिली से सब बच गए, कुत्ता बह गया, मुझे मोमिन रोने लगे, रोने लगे। ए उमर, तो अल्लाह को क्या जवाब देगा कि तेरी सल्तनत में कुत्ता पानी बह गया, रोने लगे। तो मेरे बच्चों, आप दोनों से कह रहा हूँ, ये तीनों आयतें जो हुजूर से पढ़ी ऐसे नहीं पढ़ी, अल्लाह का खौफ होता है। ऐसी फैक्ट्री में आ जाइए, एक मालिक है 250 उसके मुलाजमी, 400 मुलाजमी, 500 मुलाजमी, ऐसी फैक्ट्री है। अब अगर फैक्ट्री के मालिक को अल्लाह का खौफ है, इन 400 मुलाजमी जो खूब सजाओ जो अल्लाह को देना है, तो एक को भी देर से तनख्वाह नहीं मिलेगी और पसीना पोषित होने से पहले मजदूर की उज्जत दे जाएगी, पदयात्री भी नहीं करेंगे, ज़्यादा काम भी नहीं लेंगे। अगर ये है और ये ना होने के बाद क्या हो रहा है, अभी रमजान में 17वां रोजा था, एक चपरासी एक दफ्तर का बड़ा गयूर नसीब का किसी ने मुझे पता बताया, मैंने उनको बुलवाया, मैंने कहा क्या हाल है, मैंने कहा मुतलका कितने करती है, 5000 रुपये। तो हम तारीख से क्या बताते, 3-4 बच्चे मियाँ बीवी हैं एक छोटे से कमरे के मकान में कच्ची आबादी में रहते, मैंने कहा आप अफसारी में क्या पकाते हैं, मैंने कुछ भी नहीं पकाते। तो नहीं अफ्तार करते दस्तर कर, यानी नमक चाट के अफ्तार कर लेते, मगरिब पढ़ के तो थोड़ा सा दाल दही और कभी चावल कभी दाल रोटी वो खा लेते, और यही हमारा रात का खाना है और यही हमारी सहरी है। एक बच्ची है वो भी थोड़ी सी सिलाई कर लेती है, 5000 की तनख्वाह, और गरीब आदमी में गरीब आबादी में सिलाई के पैसे भी क्या मिलेंगे। मैंने पूछा तो आपको तनख्वाह मिल गई, ना पिछले महीने की मिली है ना इस महीने की मिली है, 17वां रोजा था, ना पिछले महीने की मिली है ना इस महीने की मिली है। मैंने कहा क्यों आपके मालिक के पास पैसे नहीं है या नुकसान हो गया, कहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन शाम को घर जाते हैं तो उनके डिग्गी में सामान घर के जो लाते हैं दिन भर के लिए बोल गए रखना पड़ता है, इतने शॉपर बदनी होती है कि मेरे दोनों बाजू दुख जाते हैं जो गाड़ी में रखता हूँ, फल सामान जो कुछ भी होता होगा। अल्लाह का खौफ ना हो तो आदमी यूं मुलाजिम से जुल्म करता है, और ये जुल्म आज एक मजदूर पे नहीं हो रहा, ये शहर के लाखों मजदूरों पे हो रहा है। 3-3 महीने की तनख्वाहें नहीं दी हैं, और कहते काम करते करो तो पढ़ना चाहो, इसलिए फिर यूनियन बनती है। यूनियन क्यों बनती है, इसलिए बनती, अल्लाह का खौफ तो यूनियन बने। ऐसे मजदूर अगर उन पर अल्लाह का खौफ है कि मुझे इस मालिक को जवाब नहीं देना, अल्लाह को जवाब देना है, मेरे में ड्यूटी है, तो वक्त से आएगा, पूरा काम करेगा, वक्त से जाएगा, तो सबसे लिए वक्त अमानत है। मसलन 8 से लेकर 4 बजे तक उसकी ड्यूटी आवर्स है, ये 8 घंटे उसके अमानत, उसके बाद अमानत है जिसके बदले में फैक्ट्री उसको मुआवजा दे। अगर ये 8 की जगह 8:30 बजे आ रहा है और 4 की जगह 3:30 बजे चले जा रहा है, तो उसकी 1 घंटे की जगह शरण नाजायज है, हराम है, क्योंकि इसने 1 घंटे की इदारे की चोरी की है। अगर उस 8 घंटे में वो कैंटीन में जाके इसके 2-4 घंटों बात करता है, तो ये घंटे उसकी शरण जायज नहीं है, बल्कि इस वक्त में उसको फोन पे किसी से बात करने का भी शरण नहीं है, ये 8 घंटे अमानत है, कोई इमरजेंसी हो। और ऐसा मजदूर मालिक के फैक्ट्री कारखाने के एक भाग धागे और कील को भी दस्त दर नहीं होने देगा, दोनों का मसला है। और बताइए मालिक को कोई शिकायत होगी मजदूरों से, मालिक को अपने दे दो मजदूर का। ये यूनियन जो बन रही है, स्ट्राइक जो हो रही है, काले बैनर लेके खड़े होते हैं कि हमारा हक दिलाओ, ये इसलिए कि दोनों में अल्लाह का खौफ है। बेटा बिल्कुल इसी तरह तुम दोनों जो है निकाह के रिश्ते में मुंसलिक हो रहे हो। इन तीनों आयतों में कहा गया है कि निकाह होते ही बीवियों के हुकूम जो आपको कराएंगे, इसका जवाब आपको अपने सास ससुर को नहीं देना, अल्लाह की कुदरत को देना। और अगर ये खौफ आपको है तो आप सारी जिंदगी इस फिक्र में लगे रहेंगे कि मेरी बीवी को कोई दुख ना हो, तकलीफ ना हो, और हमारी दोनों बच्चियों को अगर अल्लाह का खौफ और तक्वा हासिल निकाह होती शौहर से हुकूक का जवाब मुझे अल्लाह को देना है अपने सास ससुर को नहीं, वो बच्चियां सारी जिंदगी इस फिक्र में लगी रहेंगी कि मेरे शौहर को कुछ नसीब ना हो। जब दोनों भी अमीरी एक दूसरे को खुश करने में लगे हों बताइए उस दिन झगड़ा हो सकता है, किसी का मूड ऑफ होगा झगड़ा तो बदू की बात है मूड ऑफ नहीं होगा। ये क्योंकि दोनों के सामने अल्लाह का खौफ नहीं है, शौहर अपने मुतालबे रखता है बीवी अपने मुतालबे रखती है और शादी के 15वें दिन से झगड़े शुरू हो जाते हैं। अभी रमजान मुबारक से पहले शादी के 15 दिन बाद चला आते हैं फिर बदली बस खुदूर पड़ रहा था रमजान की मशगूलियत नहीं पड़ता जिनके इसराइली ताल्लुक है मुझसे तो एक बच्ची रखा देता 3 महीने में शादी को हुए झगड़ा घर में इतना झगड़ा तो वो अपना मुतालबा कर रही होता मुतालबा कर दोनों एक दूसरे को रखे तो इंशाल्लाह मूड ऑफ नहीं होगा झगड़ा शुरू। और मैं ऐसे नहीं कह रहा ये अमली चीज है, आप सब ने डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा, हमारे अकाबर में से थे शांति रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में से थे और आप यहाँ शुमारी नामजाबाद में में रहते थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, इंतकाल हो गया 25 साल हो गए हैं जैसे ज्यादा हो गया। एक दिन वो फरमाने लगी कि आज मेरी शादी को 55 साल हो गए हैं और इस 55 साल में एक दफा भी बीवी से लहजा बदल के बात करने की ना हो गया 55 साल में, गुस्सा नहीं लड़ाई नहीं लहजा बदल के बात करने की नौबत नहीं है 55 साल। और इनकी अहलिया मोहतरमा कहा करती थी इस 55 साल में एक दफे भी तो इन्होंने नहीं कहा कि मुझे पानी दे दो मुझे खाना दे दो मुझे चाय बना दो ये मेरे कपड़े दे कर दो, मैं तो अपनी सादत समझ के इनकी खिदमत करती थी। क्यों हुआ डॉक्टर साहब इसका इस्तेदार था कि जिस बीवी को अल्लाह ने मेरे साथ बांधा है तो खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है और उनकी अहलिया को यह ख्याल था कि डॉक्टर साहब को खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। 55 साल में एक दफे भी झगड़ा नहीं हुआ है, मैं ऐसी हवाई बात नहीं कर रहा कि बस सिर्फ तसव्वुर है, एक नहीं मैं आपको बीसियों गिना सकता हूं कि शादी के 60 साल में भी एक दिन झगड़ा नहीं हुआ सिर्फ जिसके दिल में अल्लाह का खौफ। तो बेटा अब तक जो अल्लाह के खौफ में तसव्वुर में कमी है उससे तो तौबा करो, आज से नियत करो कि हर चीज में अल्लाह का हक अदा करूंगा और दुनिया वालों के जो हुकूक मेरे जिम्मे हैं उसको पूरा करूंगा। ये सिर्फ बीवियों के हुकूक के बारे में नहीं है, सबसे बड़ा हक किसका है अल्लाह का। शादी के जोशलों में बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हम तक की होती है, सबसे बड़ी चीज क्या है नमाज जो अल्लाह ने हमारे जिम्मे रखी, नमाज की कज़ा होनी चाहिए खासतौर से फजर की। फुकहा इकराम ने लिखा है कि मियाँ बीवी के जिस दिन मिलने से फजर की नमाज कज़ा हो जाए और उस दिन के मिलने से हमल ठहरा यह औलाद का फरमान पैदा होगी। ये फुकहा इकराम का फैसला है मेरा नहीं है, नमाज ऐसी चीज है तो क्या तमाशा ना बनाया जाए, फोन गाँव देंगे रात को देर से सोना शादी के बाद सब ज्यादा दर्द पड़ती है फजर की नमाज को, अल्लाह के हक को अदा कर उसके बाद उसे रसूल का हक है दूसरे से चले उसके बाद हक है माँ बाप का, माँ बाप का अगर इसमें बैलेंस नहीं किया आपने आपको बहुत नाजुक तराजू लेके खड़ा होना है, बहुत नाजुक जिसमें एक रस्सी का भी वजन है वो तराजू लेके खड़ा होना है कि जो माँ बाप का हक है वो उनको देंगे और जो बीवी का हक है वो उनको देंगे। अगर बीवी की तरफ पल्ला झुका तो माँ बाप की हाँ तलबी और अगर माँ बाप की तरफ पल्ला झुका तो बीवी की हाँ तलबी, यही हो रहा है जो बीवी के हो जाते हैं वो माँ बाप की हाँ तलबी है और जो माँ बाप के हो जाते हैं बीवी की हाँ तलबी है, उनको नौकरानी बना के रखते हैं। एतदाल बेटा एतदाल एतदाल है परसों इच्छा है कि वो मेरी बीवी और माँ की बहन है हर वक्त झगड़े 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 तो लेकिन घरवाले नहीं आ रहे हैं, मैंने कि इसमें घरवालों की नहीं सुनी जाएगी क्योंकि क्योंकि शरीयत ने कहा है कि अगर औरत के दिल में अलग मकान हो तो उसका शरई हमें देना पड़ेगा। मुश्किल तो ये क्या हड्डी सीखते हैं, शादी के अहकाम नहीं सीखते वो सिखाए बात, उसका शरण हक है, शरण हक उसको अलग मकान के लिए चाहे उसी मकान में एक पोर्शन ऐसा कर दिया जाए जिसको किसी का दखल ना हो, शरण हक है हम मना नहीं कर सकते। हाँ मैंने कहा ये बीवी से बात किया तो कि अलग तो हो रहा हूँ लेकिन पहले माँ बाप को देखूंगा फिर तुम्हें देखूंगा, तुम्हारा हक देखूंगा लेकिन माँ बाप को नहीं छोड़ूंगा, ये ध्यान बनाओ। तो तवाज़ुन कायम करना है बेटा, बीवी को भी माँ बाप को कहीं शरण झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, जाहिर रिश्ते ही ऐसा है। वो तो भाई जो सगी भतीजी और भांजी को ब्याह के लाती है ना फिर वो भी बहू बन जाती है, भांजी भतीजी ही रहती है, थोड़ा तो होते ही आपको तवाज़ुन कायम करना है, दोनों को राजी करते हैं ठीक है बेटा। और सिर्फ ये तीनों आयतें आप दोनों ने नहीं कह रही हैं, ये लड़की वालों से भी कह रही हैं और लड़के वालों से भी कह रही हैं, लड़के वालों से ये तीन आयतें कह रही हैं कि अब तुम किसी की बेटी को लेके आ रहे हो जिसको बेटी समझ के रखना बहू समझ के ना रखना। ये दूल्हा के माँ बाप को ये आयतें कह रही हैं कि जिसकी बेटी को लेके आ रहे हो तो बहू बना के नहीं बेटी बना के रखना, ये बड़ा फर्क है दो लफ्जों में, बड़ा फर्क है। अपनी जवान बेटी 19-20 साल की अगर 11 महीने में छोटी रह चुका तो माए कहते कोई नहीं बच्चा है जब बड़ी होगी तो ठीक हो जाएगी, और 19 साल की बहू को ब्याह के लाए वो सो जाए तो बेबहू की उस पर पड़ती है, तुम्हारी अम्मा ने क्या सिखाया था, यही सिखाया था 11 महीने थोड़ी छोटी रहो। अब बेटी और बहू में ये फर्क, अगर बेटी को एक कप चाय का बनाना ना आए और मामूली खाना पकाना है कोई कारण नहीं, वे कहते हैं इंशाल्लाह जब बोझ पड़ेगा तो ठीक हो जाएगी, और बहू को ना आए तो क्या सिखाया था तुम्हारी अम्मा ने, चावल तक पकाने नहीं आता, विश्व ऐसे 48 साल की लड़की की शादी हुई तो घर में यही मसला। तो मैंने उनके दरवाजों का अगर आपको घर में उसकी संभालने वाली लड़की चाहिए थी तो आप 35 साल के लेके आती, 18 साल की लड़की तो पूरा घर नहीं संभाल सकती, पहले संभाल लेती थी और वे पढ़ाइयों के वो जितने होते हैं क्या बदलती क्यों हुई ये कॉलेज की क्योंकि फुर्सत नहीं। अगर आपके शौक था साज की तरह की जैसे मैं करती हूँ ऐसे बहू भी करें तो फिर 25-30 साल की उम्र की लड़की लेके आ गई, उम्र लड़की लेके आई और हर वक्त बिताने यूं से कहा जा रहा है और आप दोनों से ही कहा जा रहा है कि जैसे मेरे अपना घर मेरा है अब ससुराल का घर भी मेरा ही है, वो भी मेरा ही घर है, जैसे अपने घर को समझता हूँ ऐसे ससुराल के घर को समझ। अगर ये ना समझा तो दुनिया के अंदर जितने दामाद रूठते हैं सब कोई नहीं रूठता होगा, सबको तजर्बा जितने दामाद रूठते हैं इतना कोई नहीं रूठता, क्यों नहीं रूठ क्यों रूठते हैं कि ससुराल को अपना घर ही नहीं समझते, जबकि क्या हुआ कि जी मेरा मान नहीं मिला मुझे, पता नहीं मान क्या होता है, ढंग से खाने को पूछा नहीं, ईद पे गया था तो ढंग से बात नहीं की, अपना घर क्यों नहीं समझा, अपनी बहन के जाके अगर पंचोलियत से कोई पूछा ना जाए तो कोई रोता है शिकायत करता है, बहन है सारी के घर जाएंगे तो शिकायत होगी, खैर बीवी को शादी में अलग रूप लेंगे ससुराल में शादी है तो रूठ के बैठ जाएंगे, कोई जा रहे साफ सुथरा आके पैरों पर टोपी दुपट्टा रख के मनाते हैं, क्यों मनाते हैं ससुराल को अपना घर नहीं समझते, वो भी ऐसी घर है। हाँ मैं ये भी नहीं कहता कि ससुराल ऐसे घर बन जाएंगे अपने माँ बाप गैर हो जाए बाद जैसे भी हो जाते हैं, ससुराल के ऐसे गुलाम होते हैं कि वो अपने माँ बाप को भी समझते नहीं है, मैंने कहा ना तराजू आपको लेके खड़ा होना है बिल्कुल बारीक तरह, तो ससुराल को भी अपना घर समझना ठीक है और माँ बाप को उस बच्ची को बेटी बना के रखना, गुजारिश आपकी इस निकाह का मुद्दे का खुलासा ही है, आप लोगों की जिंदगी है और सदियां भी है। अब 23 सितंबर आज के तारीख है, तो भाई की दरखास्त है जिस सादगी से निकाह हो रहे हैं ना रुखसतियाँ हो गई में भी ऐसी सादगी से हो जाए, ऐसे ना होगा हमें तो दिखाने के लिए सीधे सारे बन के आ गए वहाँ जाके फिर सारे वही चीजें कहाँ हैं लड़की वाले तैयार है इसके लिए। मैंने नहीं कह रहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बरकत वाला निकाह वो है जिसमें ना खर्च ज्यादा हो चाहे जिसमें हर्ज ज्यादा हो, ये मेरे महबूब का इशारा है, बरकत वाला निकाह बरकत वाली शादी में जिसका कम खर्च हो और मौके तो जिसमानी साहब के खर्च जितना बढ़ता चला जाएगा बरकत कम होगा। मैं दोबारा से सोचा करता हूँ पता नहीं बरकत तो गई जैसा बाकी भी रहता हो गई है, इस दिन हम इस तरह दौड़ रहे हैं। रमजान से पहले एक शादी हुई पर कॉर्डिनेटर ने, जिस हॉल में मेहमानों को बैठाया गया था बारात को, उसकी डेकोरेशन का बिल 24 लाख था। खाने का नहीं, हॉल का नहीं, सिर्फ डेकोरेशन का बिल 24 लाख था, जिसमें 6 लाख का बिल सिर्फ उन फूलों को था जो उसी दिन हॉलैंड से ताजे मंगाए थे। और मैं ये सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा कि मैंने उनसे पूछी जो शादी में शरीक थे और लड़की वाले उस शादी के दोस्तों से सारी तफसील बताई। 24 लाख रुपये डेकोरेशन, फिर हॉल का क्या बिल होगा, खाने का क्या होगा, जहेज का क्या होगा, अल्लाह को भी जवाब देना ही नहीं देना। ये एक नहीं है, कितनी मिसालें मैं आपको दूं कि शादी के जो लोग हैं वो खर्च करते हैं, वो खर्च देकर अल्लाह की बात। असल में इनके सामने हुजूर सल्लम की जिंदगी नहीं है। मेरे महबूब ने कहा कि खिला के खाओ, पहना के पहनो। अगर आम की सीजन में आम हम लाए हैं, अगर कोई भी फल है तो गरीब बच्चे को भी दे दो पड़ोस में, अगर इतनी हैसियत नहीं है तो उसके छिलके दरवाजे पे मत फेंकना, दूर जाके फेंकना, कि गरीब के बच्चे छिलकों को देख के दिल महसूस जाएंगे कि मेरे पास पैसा हो, हमारे वालिद के पास पैसा तो हम भी आम खाते। इस कराची में आज हैं ऐसे जिस शख्स मेरे वालिद ने नमक चाट के रोजा उतारना, उनके दरवाजे अगर पकौड़े समोसे बच्चे फिर हो दरवाजे में क्या पीते, क्या पीते। कहा कि खिला के खाओ, पहना के पहनो। अब हम सोचें जिन बच्चियों की गुर्बत की वजह से शादी नहीं हो रही, लंबे चौड़े पैसे गुर्बत भी नहीं है, ऐसे मुतदिल घर है यानी दरमियाने दर्जे का, खाते पीते हैं, लेकिन ये जो मुश्किल तो नहीं पूरी कर सकते। कोई मकान जहेज में मांगता है, कोई सामान जहेज में मांगता है, पता नहीं क्या। जिनकी घर में तीन तीन चार चार बच्चियां बैठी उनसे पूछे क्या बीतती है। जब की धूम धड़के की शादियां देखती हैं तो उनके सीने में साफ रोग से काश हमारे बाप के माता अपने प्यार से सुना जाए। आज इन मासूम बच्चियों में रहम खाने वाला हमारे माशरे में कोई नहीं। बातें हम बड़ी बनाते हैं माशरा माशरा, अभी तो माशरे की स्पेलिंग भी पता नहीं है क्या होता है। ये माशरा कई बच्चियों में क्या बीतती है, बच्ची का पता है कि हजरत मेरा ताल्लुक उस कम्युनिटी से है जिसमें शादी में कम से कम 30 लाख रुपए खर्च होते हैं, कम से कम। मेरे बाप की हैसियत नहीं इसलिए मेरे रिश्ते आते हैं और वापस चले जाते हैं, आते हैं वापस चले जाते हैं। अब मेरी उम्र 22 साल हो गई और मेरी कम्युनिटी में 22 साल की लड़की का रिश्ता नहीं आता, लिहाजा वो दलाल ने जो पैसे ले लेके रिश्ते करा दिए। अलग साहब ने नहीं साबित किए कि जिन्हें पैसे देने रिश्ता कराया हो, नहीं साबित नहीं, लेकिन ये मुसीबत और हमारे गले पड़ गए और उनकी फीसें 4-5 लाख हैं दलाल, वो जहेज के परसेंटेज पे लेती हैं फीस। बड़ी बड़ी मर्सिडीज उनकी गाड़ियां हैं, नाम भी उनके बड़े मालूम हैं, वो रिश्ते लगाती हैं और जब चाहे थोड़ा वाकई उनकी डिमांड पूरी ना हो तो वो दिलदार जो है वो हर दूसरे को लेकर जाती हैं। और उस बच्ची का अब जो जुमला लिखा ना, तो अगर किसी के दिल में गोश्त का दिल है तो वो तो बेचैन हो बगैर उस बच्चे ने कहा हजरत मेरी अब हैसियत बकरी की उस रेवड़ी की सी हो गई है कि खरीदार आए कमर पे हाथ रखे देखे, पसंद आ जाए तो ले जाए, ना पसंद आए तो छोड़ के चले। जिस दिन वो खत मैंने पढ़ा था मैं कहना सारे दिन खाना खा सका न किसी बात का तय आंसू कर सकते रहते। ये माशरे की एक बच्ची का खत नहीं है, इस माशरे की हजारों बच्चियों का खत है। तो उस बच्ची ने कहा खत मैंने माँ को मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँ, मैं जिल्लत बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, मेरी माँ मेरे हम पैर पकड़ेगी, बेटा तू राजी हो जाओ ना तेरा भाई दोबारा बैठा रहेगा, क्योंकि वादा ये है जब तक बहन के रहो तो भाई के। फिर आगे उस बच्ची ने सवाल किया, ये सवाल माशरे की हजारों बच्चियों का है, उसने कहा बताइए हजरत मेरा क्या कसूर है, आप बताइए कि ऐसी बच्चियों को क्या जवाब दूं मैं कि बेटा तुम्हारा क्या कसूर है, आप पढ़े लिखे सब बैठे आप बताइए क्या जवाब। और कौन सा भाया उसके जख्म से रखू जिस उसके जख्म मर जाएगा। एक बच्चे का सवाल। अभी जैसे तेरे तक है कि हम तीन बहने हैं, तीनों ने हमने मास्टर्स किया हुआ है, बाप का हमारा इंतकाल हो गया था, हमारे रिश्ते इसलिए नहीं आते कि जेहर निकलेगा। कितनी बच्चियों की फरियाद, इन धूम धड़के की शादियों ने इन बच्चियों को घर में बाल सफेद करवाए और माँ बाप उनके सर पे सफेद चमकते हुए बाल देख के डिप्रेशन के मरीज हो जाते हैं। रातों को नींद नहीं आती थी तो भूखे, वो तो उनका पता है जिनके घर में दो दो तीन तीन बच्चियां बैठी, बाकी वो क्या और लोग कहते थे क्यों नहीं खर्च रहे, ये तो है खर्च करने का, आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इनको कमाई का मकसद भी पता नहीं बेचारों को कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के कमाई का मकसद क्या था। ये तो खिला के खाते थे, पहना के बैठते थे, शादियां करा के शादी करते थे। इसी दरखास्त है आप दोनों से कि शादी की कोशिश करें, दोनों वाले दोस्त का साथ, तुम दोनों भी तैयार रहो शादी में। अभी तो गर्दन हिला रहे हो, बाद में नहीं कहो ये भी हो जाए वो भी हो जाए। बेटा अगर ये दीनदार भी हिम्मत नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कौन करेगा। जुल्म की तहा है कि शादी हॉलों के किराए ढाई ढाई लाख हो गई, हमारे कुल बाहर से बाहर है हमें ढाई तीन लाख रुपए का किराया, गरीब बच्चे क्या करें। आखिर ये शादी हॉल नहीं थे, होटल नहीं थे, शादियां नहीं होती, सबको आगे रहते थे, होती थी और बड़ी खुशियों वाली शादी होती थी, घरों में खाना खिला दी और जरूरत दरवाजे में शादियां। हम तो बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। हुजूर का इशारा है कि बरकत साहिबाई शादी से कम खर्च। अब ठीक है हम एकदम इस पर नहीं आ सकते तो चार गाँव की जगह तीन कर दें, तीन की जगह दो कर दें, एक की जगह सादगी दे रहे हैं, सब इसके तैयार हैं। दो से नहीं कह रहा, बाकी सारे मजबूत नहीं कह रहे हैं। एक बार लड़के अगर हिम्मत कर लें ना कि हम ऐसे करेंगे, सब की हो जाएगी, लड़के गिले हो जाते हैं। कहते क्या हर एक ही दफा में शादी होती है, बेटे एक ही दफा तो सुनने में चलने का भी मौका मिलता है, कहाँ मिलेगा। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला की शादी सादगी का रहा है, हजरत अली तशरीफ लाए रिश्ते का पैगाम लेके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत फातिमा की इजाजत थी, बाहर आके एक साहबी जरा साहबे की जमात को जमा कर लो, साहबा जमा हो गए, कायनात की सबसे अधिक बच्ची जो जिन्नत में उसको सजा होगी निकाह हो गया। चंद महीने बाद जब छुट्टी हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान को बुलाया, तब फातिमा को अली के घर पहुंचा। कायनात की सबसे अधिक बच्ची की रुखसती हो रही है, जिसके लिए चाहा जाता था जन्नत से हुरे, मेकअप का सामान, जरी के जोड़े और जवाहरात के देवर की सेट ला सकती। हुरों से अच्छा दुल्हन बनाने वाला कौन होगा। अगर चाहा जाता तो उनकी जन्नत से बुरा आ सकती है, सारे मदीने में शादियां नहीं लग सकते, बहुत हो जाता है, उम्मत के लिए नमूना नहीं बनता है। इतराज वर्त करने वाले कैसे, अगर साथी सुनते तो हुजूर नहीं चाहते, कुछ भी नहीं होता। अब मगरिब के बाद थोड़ा सा अंधेरा हो गया, मैंने हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा। हजरत फातिमा ने ना कोई जहीन का जोड़ा पहना, ना ब्यूटी पार्लर गई, ना गाड़ी सजी हुई गाड़ी में बैठी, पहले ही एक मेहमान चली और पहले जगह हजरत अली का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला, अली अपनी अमानत ले लो, ये है कायनात की सबसे अधिक बच्ची की। अगर हमारी बच्चियां से ज्यादा अच्छी हैं ठीक है, हम कर चोच, लेकिन इस बच्ची से ज्यादा अच्छी बच्ची तो दुनिया में आई है ना आएगी, ये हुजूर ने नमूना है, बाकी आपके सारी अपनी शादी है ये भी ऐसी। ठीक है बेटा, अल्लाह हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक नतीजे को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا 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 اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام عن نكاح من سنتي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بیٹا جی روایت ادریس آپ ہیں جناب نوید مشتاق صاحب کی سالگرہ اور رضیہ کو میں نے آپ کے نکاح میں بوکالت انجم تنویر صاحب اور انتظام نذیر مشتاق صاحب اور مجیب احمد صاحب باویل میں 10,000 روپے جو معجل ہے آپ کے نکاح میں لیا. آپ نے رضیہ بنت نوید مشتاق کو اس محل کے بعد اپنے نکاح میں قبول کیا, کہیے میں نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک اللہ علیک و جمع میں نے خیر. بیٹا ہارون ادریس جناب عامر گلزار صاحب کی صاحبزادی عائشہ کو میں نے آپ کے نکاح میں بوکالت مختار احمد صاحب اور ان کی گواہ ہیں جو ذوالفقار اور فیصل صاحب بعوض محر 10,000 روپے جو معجز ہے آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے عائشہ بنت عامر گلزار کو اس مہر کے بدل سے نکاح میں قبول کیا, کہیے میں نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک اللہ علیک جمع میں خیر. اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسول کبیر الدین و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا رحم الراحمین يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اے اللہ ان نکاحوں کو قبول فرما, اپنی بارگاہ میں ان نکاحوں کو قبول فرما اور اپنے سے راضی ہو جانے کا ذریعہ فرما. اپنے احکامات کے آپ کی سہولت کے ساتھ زندگیوں میں آ جانے کا ذریعہ فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت دلوں میں پیدا ہو کر آپ کے کامل اتباع کے حاصل ہو جانے کا ان نکاحوں کو ذریعہ فرما. نیک اور صالح اور آج کے وجود میں آ جانے اور دین پہ جان قربان کرنے والی اولاد کے وجود میں آ جانے کا ان نکاحوں کو ذریعہ فرما. عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے کا ان نکاحوں کو ذریعہ فرما. اللہ ہمارے دونوں بچوں اور دونوں بچیوں میں آپس میں ایسی محبت عطا فرما جیسے تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو محبت عطا فرمائی تھی, اور ان کے آپس میں ایسی محبت عطا فرما جیسی محبت نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عطا فرمائی تھی. اللہ ہمارے ان بچوں بچیوں کو ہر حاسد کی حسد سے محفوظ فرما, ہر ساحر کے سحر سے محفوظ فرما, ہر دشمن کی دشمنی سے محفوظ فرما, ہر بدنظر کی بدنظری سے اور بدخواہ کی بدخواہی سے ان دلہوں کو اور دلہنوں کو اور ان کے خاندانوں کو پوری طرح محفوظ فرما. اللہ پوری طرح محفوظ فرما, اللہ پوری طرح محفوظ فرما. اللہ ہمارے ان بچوں اور بچیوں سے تو راضی ہو جا, انہیں اپنا بنا لے اور توفیق بندگی نصیب فرما دے. ان بچوں اور بچیوں کی دنیا بھی بھلی بنا دے اور ان کی آخرت بھی بھلی بنا دے. ان بچوں بچیوں کو ہر طرح کا چین سکون اطمینان راحت خوشیاں صحت تندرستی خوشحالی عافیت اور سہولت نصیب فرما, اور ان بچوں کے ہر قسم کی بلاؤں سے آفات سے مصیبت سے دشمنیوں سے لڑائی جھگڑوں سے تنگیوں سے بیماریوں سے محفوظ فرما. اللہ ان دونوں بچوں بچیوں سے دین کی محنت کا کام لے لے, جیسے تو نے صحابہ اور صحابیات کو ساری دنیا میں دین کے پھیلانے کے لیے قبول کیا, اللہ ہمارے ان بچوں اور بچیوں کو بھی ساری دنیا میں تیرے احکامات کو پھیلانے والا بنا دے, اور اس سارے مجمع کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مقصد کو اپنا مقصد اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کو اپنا کام بنانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جن کے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو جوڑ کے رشتے عطا فرما، سادگی اور سنت سے شادیاں کرا کے ماں باپ کو اطمینان چین سکون نصیب فرما۔ اس سلسلے جتنے لوگوں نے ہم سے یہ کسی سے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین۔